ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक 67 के आगे। अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रुषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्थात यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। इस सर्वगुह्यतम वचन के लिए यहाँ इदम पद आया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह सहिष्णुता चार प्रकार की होती है। पहला द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना, यानी ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता या द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः। दूसरा वेग सहिष्णुता, यानी काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना, काम क्रोधोद्भवम वेगम। तीसरा परम मत सहिष्णुता, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है, प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। चौथा परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सर हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्त, ये चारों सहिष्णुताएँ सिद्धों की हैं। ये सहिष्णुताएँ जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है और जिसका लक्ष्य न हो वह अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु को सर्वगुह्यतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्म को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा, इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों आचरणों भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वह यदि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं जो तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे, ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर लेगा, इससे मेरी सर्वगुह्यतम बात का दुरुपयोग होगा, अतः इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। न भक्ताय कदाचन, यानी जो भक्ति से रहित हैं, जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ आदि आदि इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा, इसलिए ऐसे अभक्त को कभी मत कहना। न चाशु श्रुष्वे वाच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा, यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा, अपराध करने वाले का भला नहीं होता, अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। न च माम यो अभ्यसूयति, जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतःकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है, अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है, इसलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी जहाँ अपना मत बताया, वहाँ श्रद्धावंतः अनसूयंतः पदों से यह बात कही कि श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य में भी श्रद्धावान नसूयश्च पदों से यह बताया है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना, यह कहने का तात्पर्य दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है, प्रत्युत जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर, भगवान पर दोषारोपण करके महान पतन की तरफ न चला जाए, इसलिए उसको कहने का निषेध किया है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वालों को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अभक्त और दोष दृष्टि वाले को कहने में जितना दोष है, उतना दोष अतपस्वी और सुनना न चाहने वालों को कहने में नहीं है, क्योंकि अभक्त और दोष दृष्टि वाले में विपरीत बुद्धि है। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी, जिसमें भक्ति का अभाव है, उसको यहाँ अभक्त नहीं कहा गया है। जो भक्त है उसमें भी बेसमझी से असूया दोष आ सकता है, पर भक्ति के कारण वह दोष स्वतः मिट जाता है। अशुशुशोभे का अर्थ है जो अहंकार के कारण नहीं सुनना चाहता, जो बेसमझी से नहीं सुनना चाहता, उसको यहाँ अशुश्रवे नहीं कहा गया है। गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा, यह बात भगवान आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। य इदम परम गुह्यम मद भक्तेष्व भी धायस धास्यति भक्तिम मई पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, अर्थात मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद यानी गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या, जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपये मान बड़ाई भेंट पूजा आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भावों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख जलन संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहाँ मद भक्तिम लभते पराम पदों से कहा गया है कि ब्रह्म भूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ सांसारिक मान बढ़ाई आदि किसी की भी किंचन मात्र कामना न रखकर केवल भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसलिए यहाँ भक्तिम मई पराम कृत्वा मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। यह इदम परम गुह्यम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुह्य संवाद लेना चाहिए, जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परम गुह्यम पदों में ही गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम, ये सब बातें आ जाती हैं। मद भक्तेश्व भी धास्यति, जिसकी भगवान और उसके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मेरे को प्राप्त होगा। पिछले श्लोक में ना भक्ताय पद में एक वचन दिया और यहाँ मद भक्तेशु पद में बहु वचन दिया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हों वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस दोषी व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौआ आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौओं को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। मामे वैश्यत्य संशयः, अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भाव पूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और जो खाना पीना शौच स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है वह भी शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि, अर्थात उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। व्याख्या, जो अपने में लौकिक पारलौकिक प्राकृत पदार्थों की महत्ता लिप्सा आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है वह पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचन मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रिय कृत्तम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रिय कृत्तम पदों में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है, इसलिए वह प्रिय कृत्तम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रिय कृत्तम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करना है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म संप्रदाय सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य है कि जो गीता का आदर करता है, ऐसा मनुष्य किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात विषमता को छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके मन में किसी भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, महान आनंद, महान सुख की सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परिशिष्ट भाव। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है, इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, वह क्या करे, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों, सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है तब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचन मात्र भी अच्छी नहीं लगती। एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन लग जाती है। एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है। तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है, ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई बातें मिलती हैं त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता, इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक यहाँ से पूछना आरंभ किया वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ है। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखनलाल की याद आती है। जानि लखन समदेह असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा, निरखे निषादु नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखनु निहारी। ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है, विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊँगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे, तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं, एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। इति मे मतिः, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ और सब जगह ही मेरे कान हैं, अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेश की याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में और तेरे और मेरे सारे संवाद की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया, साथ ही ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा, उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे। परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सब लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थ को भावों को न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप पाठ रूप यज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साह पूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहां निवास करते हैं, साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहां निवास करते हैं। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयोः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्भव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। परिशिष्ट भाव, भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी न करे कर सके वह क्या करे, इसके लिए आगे के श्लोक में उपाय बताते हैं। श्रद्धावान नसु यश्च श्रृणु यादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अर्थात श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या, गीता की बातों को जैसा सुन ले उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है, और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचन मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ दो बार अपि पद देने का तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करुणा पाटव ये चार दोष होते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परावधि हैं। अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं, इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। अतः गीता सुनने वाले को कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात न चचे, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल निस्संदेह न हो, इसे भ्रम कहते हैं। वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परता की कमी, लोग समझें या न समझें इसकी बेपरवाह करता है, इसे प्रमाद कहते हैं। वक्ता की रुपए पैसे, मान बढ़ाई, आदर सत्कार, सुख आराम आदि लौकिक पारलौकिक कुछ भी पाने की इच्छा है, इसे लिप्सा कहते हैं। और वक्ता जिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी आदि से अपने भाव प्रकट करता है उन करणों में पटुता कुशलता नहीं है और वह श्रोता की भाषा भाव योग्यता को नहीं जानता, इसे करणा पाटव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियां आती थीं। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा, नहीं प्रभु। फिर पूछा, तो फिर तुम रोते क्यों हो? उसने कहा, मैं जब अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवान उवाच पढ़ता हूँ तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। पर अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर करके राजी होता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। यह पुण्य कर्मणाम पद से सकाम भाव पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है, प्रत्युत उनके बारे में कहा है कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यह उन पुण्य कर्मा भक्तों को लेना चाहिए जिनको भगवान का प्रेम दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य कर्मा भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार वैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव, श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता को सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्ग आदि लोकों से लेकर भगवन लोक तक अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बड़ा महात्म्य है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं अपने घर से आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आऊँ क्या, मैं जाऊँ क्या? सिपाही ने कहा, आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज़ रात में उस सिपाही के पास आती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति क्षीण करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूँगी। इस तरह वह रोज़ रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डल के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से निकाल कर पुड़िया को देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। फिर वह चुड़ैल उसके पास कभी नहीं आई। पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? व्याख्या। एतत् शब्द अत्यंत समीप का वाचक होता है और यहाँ अत्यंत समीप 71वां श्लोक है। 69वें 70वें श्लोकों में जो गीता का प्रचार और अध्ययन करने वाले की महिमा कही है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पीछे के श्लोकों का लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं? एकाग्रेण चेतसा कहने का तात्पर्य है कि गीता में भी जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की और 67वें श्लोक में इदम ते नात पस्काय कहकर निषेध किया, और मेरे वचनों में जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्व गुह्यतम शरणागति की बात को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं? उस पर ख्याल किया कि नहीं? कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टे धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया, और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं। क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। पार्थ, संबोधन देकर भगवान अपनेपन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? पहले अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। अब यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय बने हो, अब इस वास्तविक तत्वरूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। जय श्री राम।